उसका कुछ कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए। तो छह छह साल तक अमेरिका में वेस्टर्न कंट्री में लोग साथ साथ रहते हैं, उसका नाम है कॉमन लॉ मैरिजेस, साथ रहते हैं। देखो भाई, हम शादी का कमिटमेंट नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज वी कैन गो ईच अदर हम लोग साथ रहेंगे, जब प्रॉब्लम होगा जुदा हो जाएंगे। छह साल साथ रहते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो भाई अच्छा अब तो आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेट्स गेट मैरिड। शादी होती है, दूसरे दिन तलाक हो जाती है। 79% डिवोर्स अमेरिका में, 79% डिवोर्स रेट है अमेरिका में। वो सोसाइटी हमारे लिए नमूना बन ही नहीं सकती। तो क्यों है भाई, अगर शर्त यह है कि बगैर जाने की शादी करेंगे, जानने के बाद भी कैसे तलाक हो रहा है? ये सवाल हम, उसका हल एक ही है, लिख करके रखिए, मैरिज इज ए कमिटमेंट। मैरिज इज कमिटमेंट। हैंड्स फ्री चाहता था मगर नहीं हुआ, क्या करें, कोई चीज फ्री नहीं है दुनिया। जब तक हस्बैंड एंड वाइफ ने ये डिसाइड नहीं किया कि हम वी आर कमिटेड टू लिव टुगेदर अंटिल द डे ऑफ जजमेंट, ये कमिटमेंट जरूरी है। और ये यकीन कर लीजिए कि हम लोग समझते हैं कि दूसरे घर में आराम है, सब घरों में ही दुनिया, दुनिया में आसानियां नहीं है, दुनिया में परेशानियां ही हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि दूसरा घर खुश है। रॉन्ग पर्सपेक्टिव है। मैं 2 साल पहले मेरी फैमिली के साथ इंडिया गया था, हम लोगों ने कहा कि जरा सा ट्रेन में सफर करेंगे। एक जगह ट्रेन रुकी, एक झोंपड़ी के अंदर बूढ़ा बूढ़ी सूखी रोटी और चटनी खा रहे थे। मैंने बीवी को बताया कितनी मोहब्बत से, जैसे चिड्डा और चिड़िया झोंपड़ी में कंटेंटमेंट है। देखो उधर हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास कंटेंटमेंट नहीं है, इसलिए कि कमिटमेंट नहीं है। इस्लाम ये कहता है शादी कामयाब शादी वो है, नो मैटर क्या होगा मगर साथ रहेंगे, इसलिए कि इंसान वही है जो साथ दे। इंसान के माने उन्स से है, उन्स के माने टू गिव कंपनी। अगर कंपनी ही, शौहर ही या बीवी ही जिस पे भरोसा है, जिस पे तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे तो क्या हशर होगा। दिन भर का थका हुआ शौहर घर में आए और वो ज़ौजा मोहतरमा मुंह फुलाए बैठी हुई है, इसलिए कि सासू जी ने कुछ कह दिया। अरे भाई, तमाम प्रॉब्लम को क्या करो, जिस तरह से झाड़ू देती हो उस तरह से गोशे में रख दो, दरवाजा खोलो तो मुस्कुरा करके खोलो, तो इंशाल्लाह वो पूरे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। उसी तरह से मर्द बाहर से आता है तो बाहर वो मैट रखा होता है, उसको साफ करे जूतों को, यानी पूरा गुस्सा उससे को साफ कर दे, अंदर दाखिल हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम, सलामती, मुस्कुराए। मुस्कुराहटों में आपके 50 प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। हम लोग मुस्कुराना भूल गए। सरकार रिसालत में आपकी सबसे बड़ी सीरियत क्या थी, आप मुस्कुराते थे, दुनिया के प्रॉब्लम कितने ही हो लेकिन आप हमेशा मुस्कुराते थे। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज ए प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम है, कोई और सोल्यूशन नहीं है, नहीं मालूम होना ये चाहिए फैमिलीज में जॉइंट फैमिली ना हो, मगर इकोनॉमिकली खुसूसन ईस्टर्न कंट्री में नामुमकिन है। मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे में जो एक कोर्स पेश किया तो एक साहब आए, मौलाना नामुमकिन है कि बॉम्बे में आप इस तरह की बात करें। इंशाल्लाह उसका सलूशन क्या हम बयान करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ डाउरी, वर्किंग वुमेन, जॉब, हाउस कोर्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। महर का मसाला हमें मालूम नहीं है, हम लोग शादी कर लेते हैं। दो मौलवी बैठे हुए हैं, एक मौलवी कहता अनका तो मवक्किलती मवक्किलका अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम, दूसरा मौलवी कहता कबिलतुन निकाह ले मवक्किली अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम। बीच में वो बेवकूफ बैठा हुआ सर हिला रहा, हालांकि कुछ भी मालूम नहीं उसको, कल से किस परेशानी में जा रहा, उसको कुछ पता नहीं है कि किस प्रॉब्लम में जा रहा है। मालूम मालूम मौलवी कह रहे हैं, बीच वाले को कुछ मालूम नहीं। हम लोगों की शादी हो जाती है, महर मालूम नहीं है। हम लोगों की शादी होती है, कमिटमेंट मालूम नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, इसीलिए हमने जो प्री मैरिज को इंट्रोड्यूस किया था, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिम्मेदारी क्या है। औरत लड़कियों के पास, दुल्हनों के पास मौलवी साहब जाते हैं, हालांकि वकील है, द वर्ड इज वकील, वकील मीन्स लॉयर, लॉयर के माने लड़की की तरफ से काम करना चाहिए मौली साहब को, यानी उसके इंटरेस्ट की बात करना चाहिए। मौली साहब आते हैं, तुम्हारा निकाह फलां साहब से हो रहा है, इतना महर है, राजी हो? बाजू वाले कहते जल्दी बोलो वरना मौली साहब चले जाते हैं। अब वो नहीं मालूम फोर्स में क्या होता है। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। ये किसने का महर मालूम है? अक्सर को महर मालूम नहीं है। 90% मैरिजेस में लड़कियां वाकिफ नहीं है व्हाट इज महर। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच ए ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे पास हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है ये चीजें। इमाम के पास एक सहाबी आया और आपका जो कमरा था नए पर्दे लगे हुए थे, गाँव तक ये खूबसूरत, वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, ओ इमाम मोहम्मद बाकर ये माशाल्लाह। इमाम समझ गए कि वो इसको बहुत ताज्जुब हो रहा है। इमाम ने कहा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैंने अभी शादी की है और मैंने बीवी को महर दिया है, वो महर से आपने ये घर को सजाया है, मेरा हक नहीं है उसका। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास महर का जो ताल्लुक हम समझते हैं क्या है, महर प्रॉब्लम हो तो अदा करने की चीज। जी नहीं, महर इज मैरिज गिफ्ट। मैरिज गिफ्ट कुड बी ए रिंग, कुड बी ए फ्लावर, कुड बी $1 million। उसका हक है, लड़की का हक है, दुल्हन का हक है, वो कह सकती है मेरा ये। हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं, एक एक्सट्रीम ईरान और अरब कंट्रीज में है। अरब कंट्रीज लड़कियों को एज ए वेल्थ गिनते हैं, लड़कियों को एज ए वेल्थ गिनते हैं। क्यों? इसलिए कि जब तक कि अच्छा महर नहीं देता देते नहीं हम लोग। और हमारे पास यह है, लिख लीजिए मौलाना 2-4 लाख रुपये लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, बाद में माफ हो जाएगा या माफ करा नहीं है। मैरिज गिफ्ट का नाम है महर, और महर कुछ भी मांग सकती है। और इस सिलसिले में भी बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है, हमने प्री मैरिज में ये बात कही है। मैनेजिंग फाइनेंस एक प्रॉब्लम है, इसको भी सोल्यूशन को हम बताएंगे। डिस्प्यूट रिकंसिलिएशन डिवोर्स चाइल्ड कस्टडी, ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं। बहुत टाइम हो चुका है लेकिन तेजी से मैं कोशिश करूंगा किसी हद तक हम लोग चले जाएं। सबसे पहला मरहला शादी के प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेशन टू स्टार्ट एन अर्ली फैमिली। सबसे पहले यहां पर हमारे यहां जो परेशानी है वो ये है कि हम लोग शादी करते हैं खानदान के लिए, हालांकि शादी होना चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। जब तलाश करने निकलते हैं, पसंद आई या नहीं, माँ को पसंद आई या नहीं, चचा को पसंद आई या नहीं, पूरा खानदान पसंद करे नहीं भाई, जोरू मरद राजी तो क्या करेगा, काजी दो को राजी होना है, पूरा खानदान कहाँ है? इस्लाम ने यह हक नहीं दिया है। एक नौजवान लड़का इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आया, मौला मेरे माँ बाप किसी और के पास शादी करना चाहते हैं, मेरा तेरी तबीयत किसी और मोमिना से है। मौला ने कहा जहां से तेरी तबीयत चाह रही उससे शादी कर, मैं लव मैरिज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हकायक को प्रमोट कर रहा हूँ जो हकीकत है। हमारे पास शादी का मसला हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान है, और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, उसी तरह से फैमिली में भी। अब शरीयत के लिए फज़ल मसाइल उठा करके देखिए, आया बच्चों का पैदा करना वाजिब है? नहीं है। अब बच्चों का रोकना सही है? नहीं है। तो क्या करना चाहिए? दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड एंड वाइफ शादी के बाद। हमारा तो प्रपोजल ये है सबके लिए, 2 साल तक जरा सा बच्चे ना हो तो बेहतर है, इसलिए कि यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत है बच्चों के लिए। आपको अंडरस्टैंड की जरूरत है, आपको टाइम की जरूरत है। और चाइल्ड बेयरिंग के लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी जो तरबियत औलाद का भी रखा है, और मैंने मजालिस भी पढ़ी है, मगर उस सिलसिले भी ये चीज़ गुफ्तगू नहीं कर सका हूँ, मगर इंशाल्लाह अगर कभी हुआ तो उस सिलसिले में भी गुफ्तगू हम करेंगे। कोशिश करें हम लोग इस मसले को समझें कि बच्चों का पैदा करना वाजिब नहीं है। हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें कि हम लोग फैमिली को कब से प्लान करेंगे, आया 1 साल बाद करेंगे, दो साल बात करेंगे या तीन साल बात करेंगे, शरण इश्काल नहीं है। बच्चे को आने से रोकने में कोई इश्काल नहीं है, लेकिन बच्चा जैसे आ गया शिकम में, उसका अबॉर्ट करना हराम है। और हराम सख्त कत्ल नफ्स है, आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले डिसाइड करना है कि हस्बैंड वाइफ को कि हम लोग कब करेंगे। हमारा प्रपोजल ये है कि कम से कम दो साल मारिफ यानी आपस में एक दूसरे को पहचानने के लिए चाहिए। बेहतर है कि पहले अच्छी तरह से काम डाउन अंडरस्टैंड कर लें। और ये भी याद रख लीजिए, अगर पहले जानते भी थे, कजिन भी हो सकता है जानने वाले से शादी किए, फिर भी शादी के बाद के फीलिंग्स अलग हो जाते हैं। सोने को घस के देखो, इंसान में बस के देखो। जब तक इंसान में बसेंगे नहीं, उस वक्त तक पता नहीं चलता कि इंसान कैसा है। तो शादी के बाद एक्सपेक्टेशन टू स्टार्ट एन अर्ली फैमिली, हैविंग चिल्ड्रन इज नॉट वाजिब बट प्लानिंग फॉर द ऑफ स्प्रिंग इज वाजिब। इसलिए कि मकसद इस्लाम में शादी का यकीनन एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन डिजायर्स यकीनन है, लेकिन ऑफ स्प्रिंग आइंदा आने वाले नस्लों की हिफाजत बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, वो इंडियन स्लोगन है, नहीं मालूम कहां से हमारे पास आ गया। सरकार रिसालत में आपने क्या फरमाया, तना कहु तना सुलू तक इन्नी उबाही बेकुमल उमम। तुम ज्यादा बच्चे रखो, ज्यादा के माने नहीं कि क्वांटिटी हो, क्वालिटी के साथ हो, मेरे पास एफर्ट हो। और हर एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के लिए ब्रेक भी होना चाहिए अच्छा खासा। मेरा ख्याल है कि जितना दो साल तो बच्चे के दूध पिलाने का जमाना है, दो साल से ज्यादा अरसा होगा तो बहुत ही हेल्थी बच्चे होंगे। शुड फॉलो एवरीवन। मौलाना सोसाइटी में ये हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। देखिए, लोग उनके प्रेशर में जाने वाला मोमिन नहीं होता। एक जुमला लिख लीजिए और याद रख लीजिए, मोमिन असर पजीर नहीं होता, असर गुजार होता है। समझ में आ रही बात? मोमिन असर को कबूल नहीं करता, असर डालता है दूसरों पर। तो कभी असर को कबूल मत कीजिए अपने हर एक सिचुएशन। आज के इतने बड़े मजमे में 600 अगर यहां पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। मैं किसी के सिचुएशन की बात नहीं कर सकता, मैं एक जनरल गुफ्तगू कर रहा हूं। आप लोग अपने सिचुएशन के एतबार से काम कीजिए, कभी प्रेशराइज ना हो जाइए। चूंकि फलां जगह फलां साहब ये कह रहे हैं, फलां मेरी खाला कह रही है, मेरे ससुराल कह, ना आप कमरे के अंदर डिसाइड कीजिए।